मैं हूँ विभूति शर्मा और आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार। 30 नवंबर 2018 के इस बुलेटिन में शामिल है, मध्य पूर्व समस्या का हल दो देशों के रूप में ही होगा टिकाऊ, कहा महासचिव ने। किशोरों और बच्चों को एड्स के वायरस से छुटकारा दिलाने के प्रयास हैं बहुत धीमे। अपने देश में ही विस्थापित और बेघर लोगों की मदद के लिए नई मुहिम। अफगानिस्तान में शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए हुआ दो दिवसीय सम्मेलन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि फिलिस्तीनी समस्या का हल दो राष्ट्रों के रूप में ही निकल सकता है और स्थिति को दबाए रखना काफी नहीं होगा। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर महासचिव ने ये बात कही। ये दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष संबंधित समारोह 28 से 30 नवंबर तक चले। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1947 में 29 नवंबर को ही फिलिस्तीन के विभाजन के मुद्दे पर प्रस्ताव संख्या 181 को पारित किया था, लेकिन करीब 7 दशक गुजर जाने के बाद भी स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र वजूद में नहीं आ सका है। 1977 में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया और तभी से फिलिस्तीनियों के साथ समर्थन जताने के लिए हर साल ये दिवस मनाए जाने लगा। महासचिव ने फिलिस्तीनी और इजरायली नेताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वो एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प फिर से ताज़ा करें।
I call on all actors, and first and foremost, the leadership of Israel and the Palestinian Authority.
मैं सभी महत्वपूर्ण हस्तियों और खास तौर पर इजरायली और फिलिस्तीनी प्रशासन के नेताओं का आह्वान करता हूं कि वो साहसी कदम उठाएं और प्रस्ताव संख्या 181 में किए गए वादों को पूरा करने का रास्ता साफ करें। ये रास्ता ऐसे दो राष्ट्रों की स्थापना की मंजिल की तरफ जाता है जहां दोनों देश अच्छे पड़ोसियों की तरह शांति और सुरक्षा के साथ रहें। ये दोनों देश अपने अपने नागरिकों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करेंगे। इसराइल और फिलिस्तीन के रूप में इन दोनों देशों की राष्ट्रीय सीमाएं 1967 की सीमाओं पर आधारित होंगी और यरूशलम दोनों ही देशों की राजधानी के रूप में काम करेगा। इसमें पूर्वी यरूशलम फिलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी होगी। यही एकमात्र तरीका और रास्ता है जिसके जरिए फिलिस्तीनी लोगों के बुनियादी अधिकारों को हासिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। अगर मौजूदा चलन यूं ही जारी रहा तो साल 2030 तक एड्स की वजह से हर दिन औसतन 80 किशोरों की मौत होने लगेगी। ये ताज़ा आंकड़े संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट में दिए गए हैं जो गुरुवार 29 नवंबर को जारी की गई। रिपोर्ट में आह्वान किया गया है कि एड्स से प्रभावित किशोरों को उपलब्ध कराए जाने वाले इलाज में तुरंत सुधार की ज़रूरत है, साथ ही एड्स होने से रोकने के लिए भी ठोस उपाय करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है चिल्ड्रन HIV एंड एड्स। इसमें जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि HIV के संक्रमण और एड्स से संबंधित बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में कमी की रफ्तार धीमी पड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक HIV के संक्रमण के शिकार बच्चों की संख्या में कमी लाकर 14 लाख तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आज के अनुमानों और चलन पर नज़र डालें तो संक्रमण के शिकार बच्चों की संख्या 2030 तक करीब 19 लाख होगी, जो कि लक्ष्य से 5 लाख ज़्यादा होगी, यानी विश्व ये लक्ष्य हासिल करने में 5 लाख से पीछे होगा। इस समय के आंकड़ों के अनुसार HIV के वायरस से संक्रमित 19 वर्ष और उससे कम उम्र के युवाओं, किशोरों और बच्चों की संख्या करीब 30 लाख है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरियटा फोर का कहना था कि रिपोर्ट में रत्ती भर भी शक के बिना ये स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं और किशोरों में एड्स को 2030 तक खत्म करने के प्रयासों में दुनिया अभी सही रास्ते पर नहीं चल रही है और मंजिल से भटकी नजर आती है। हेनरियटा फोर ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि HIV के संक्रमण को महिलाओं से उनके बच्चों में पहुंचने से रोकने के प्रयासों में अच्छी कामयाबी मिली है, लेकिन उसमें भी वांछित सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा एचआईवी के संक्रमण और एड्स का इलाज सटीक तरीके से करने और किशोरों और युवाओं में इस वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों में वांछित कामयाबी नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM और आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के डेटा विशेषज्ञों ने अपने ही देशों में विभिन्न कारणों से विस्थापित होने वाले लोगों की मदद के लिए अनेक एजेंसियों के साथ हाथ मिलाया है। गौरतलब है कि अनेक देशों में प्राकृतिक आपदाओं और लड़ाई झगड़ों के माहौल की वजह से लाखों लोग बेघर होने पर मजबूर हैं। उनकी मदद के लिए कुछ नई योजनाएं लागू करने के लिए ये पार्टनरशिप की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IOM के भीतर ही एक विभाग ऐसे लोगों की ठोस जानकारी रखता है जिन्हें अपने ही देश में बेघर या विस्थापित होना पड़ता है। इस डेटा सेंटर का मकसद अपने ही देश में बेघर या विस्थापित हुए लोगों की हर संभव मदद करना है, जिसके लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कुछ ठोस नीतियां बनाई और लागू की जाएंगी। IOM के महानिदेशक एंटोनियो वितोरिनो का कहना है कि इस पार्टनरशिप की बदौलत आंतरिक विस्थापित लोगों की मदद करने के प्रयासों में बेहतरी और टिकाऊपन आएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचने में मदद मिलेगी, क्योंकि देशों के भीतर विस्थापित या बेघर होने वाले लोगों की मुश्किलों और तकलीफों के लिए अभी समुचित जागरूकता नहीं है। अनेक देशों में राजनैतिक अस्थिरता, लड़ाई झगड़े और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विस्थापित और बेघर होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे लोगों की संख्या वर्ष 2000 के मुकाबले करीब 2 गुना हो गई है। डेटा निगरानी सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 में अनेक देशों में जलवायु परिवर्तन की वजह से बने मुश्किल हालात और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से करीब 1,88,00,000 लोग अपने ही देशों के भीतर विस्थापित या बेघर हुए थे। अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिनीवा में हुआ है। 27-28 नवंबर को हुए इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा अनेक देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की और युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में अमन शांति कायम करने के लिए वहाँ के लोगों के साथ एकजुटता जाहिर की। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टोबी लेंजर ने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वर्ष 2019 अफगानिस्तान में अस्थिरता शुरू होने के 4 दशक पूरे कर रहा होगा। गौरतलब है कि 1979 में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी और तभी से वहां राजनीतिक उथल पुथल के साथ युद्ध और हिंसा जारी रहे हैं। टोबी लेंजर ने खास ध्यान दिलाते हुए कहा कि देश की ज़्यादातर आबादी ने सिर्फ लड़ाई झगड़े और हिंसा का माहौल ही देखा है और उन्हें यही सामान्य लगता है, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण दौर देखा ही नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग अब शांति की शिद्दत से भूखे नज़र आते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति कायम करने की लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में भरसक प्रयास कर रहा है। एक और गंभीर घटनाक्रम ये है कि अफगानिस्तान में भीषण सूखा पड़ा है, जिसने लाखों लोगों को मानवीय सहायता पर निर्भर बना दिया है, और वो भी इमरजेंसी के स्तर पर। डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टोबी लेंजर का कहना था कि अफगानिस्तान में करीब 36,00,000 लोग लगातार अकाल यानी खाने पीने के सामान की भारी किल्लत के हालात में जीने को मजबूर हैं। ऐसे हालात अकाल पड़ने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र समाचार। मैं हूं विभूति शर्मा, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।